आज है 26 फरवरी दिन सोमवार। नमस्कार भारत में अभिवादन स्वीकार करें संदीप सोनी का। सीरिया में संघर्ष विराम के बावजूद विद्रोहियों के ठिकानों पर हवाई हमले।
In almost 7 years of war in Syria, real ceasefires have been rare, ineffective and short.
RSS प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं की एकता पर जोर दिया।
क्योंकि शक्ति प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं होती, शक्ति होती है तो दिखाई देगी।
मेघालय में महिला प्रधान समाज क्यों है सत्ता से वंचित।
चुनाव लड़ना हो या जंग, इसे सिर्फ पुरुषों का ही काम माना जाता रहा है।
और सुनिए,
श्रीदेवी की गैर कानूनी भारतीय फिल्में और वो भी हॉस्टल के हॉल में देखना, ये था हमारा प्रतिरोध जिया की तानाशाही के खिलाफ।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी का पार्थिव शरीर आज दुबई से भारत लाया जाएगा। श्रीदेवी के पति बोनी कपूर के एक प्रवक्ता ने मीडिया को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में बाकी जानकारी बाद में दी जाएगी। श्रीदेवी का शनिवार देर रात दुबई में कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया था। वे 54 वर्ष की थीं। सीरिया की सरकार और रूस पर विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके पूर्वी गुटा में चलाई जा रही कार्रवाई रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा है। पूर्वी गुटा में चल रहे संघर्ष में एक हफ्ते के भीतर सैकड़ों नागरिकों की मौत हो चुकी है। फ्रांस और जर्मनी के नेताओं ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से आग्रह किया है कि वे सीरिया सरकार पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित संघर्ष विराम को मानने के लिए दबाव बनाएं। शनिवार को सुरक्षा परिषद में संघर्ष विराम का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित होने के बाद भी सीरिया सरकार की तरफ से पूर्वी गुटा में हवाई हमले जारी हैं। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने घोषणा की है कि अगर सेंटर लेफ्ट सोशल डेमोक्रेट्स के साथ उनकी पार्टी की गठबंधन सरकार बन जाती है तो वह अपनी पार्टी से ही कैबिनेट मंत्रियों का चुनाव करेंगी। इसमें एंगेला मर्केल के धुर विरोधी जेम्स स्पैन का नाम भी शामिल है, जिन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया जा सकता है। जेन स्पैन मर्केल की रूढ़िवादी पार्टी के वही नेता हैं जिन्होंने मर्केल की शरणार्थियों के प्रति उदार नीति की खुलकर आलोचना की है। इस पर मर्केल का कहना है कि वे आलोचनाओं के लिए तैयार हैं। Merkel ne kaha.
Ich finde, so habe ich jedenfalls Jens Spahn heute auch verstanden, dass wir das genauso wie mit.
मैं ये समझती हूँ और मेरे ख्याल से जैन भी ये समझते होंगे कि हम बाकियों की तरह कुछ बेहतर करने की चाह रखते हैं। मेरी नीतियों की आलोचना करने वाले जैन अकेले नहीं हैं। मैं इन आलोचनाओं के लिए तैयार हूँ। हम जर्मनी में बदलाव लाना चाहते हैं और मुझे विश्वास है कि जैन भी ऐसा ही सोचते होंगे। ये थे जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका ने उत्तर कोरिया के साथ किसी भी तरह की सीधी बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। अमेरिका का कहना है कि उत्तर कोरिया के साथ तभी बातचीत संभव है जब वह अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह बंद कर देगा। दक्षिण कोरिया ने कहा था कि विंटर ओलंपिक्स में हिस्सा लेने आया उत्तर कोरिया के प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका के साथ बातचीत की इच्छा जताई थी। इससे पहले उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री ने विंटर ओलंपिक के दौरान दोनों कोरियाई देशों के एक साथ हिस्सा लेने की तारीफ की थी। साथ ही उन्होंने अमेरिका की तरफ से उत्तर कोरिया पर लगाए गए नए प्रतिबंधों को युद्ध की तरफ बढ़ते कदम बताया था। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो में राष्ट्रपति जोसेफ कबीला के विरोध में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने गोलीबारी की और टीयर गैस का इस्तेमाल भी किया। इस कार्रवाई में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाने के बावजूद भी रविवार को भारी संख्या में रोमन कैथोलिक्स देश के कई हिस्सों में सड़कों पर उतरे। प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले एक पादरी को सुनिए। जब तक हम अपने नेताओं की तरफ से कोई सही कदम उठता हुआ नहीं देखेंगे तब तक हम अपना विरोध प्रदर्शन भी खत्म नहीं करेंगे। हो सकता है आने वाले वक्त में हमारे विरोध का तरीका बदल जाए, लेकिन विरोध तो जारी ही रहेगा। ये थे एक प्रदर्शनकारी पादरी के शब्द। अमेरिका की नेशनल राइफल एसोसिएशन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच तनातनी बढ़ती हुई देखी जा सकती है। हाल ही में फ्लोरिडा में एक स्कूल में हुई गोलीबारी की घटना के बाद अमेरिका में गन बैन की मांग जोर पकड़ने लगी है। इसी के मद्देनज़र राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वे बंदूकों से जुड़े कुछ प्रतिबंधों को मानने के लिए तैयार हैं। वे बंदूक खरीदने की उम्र सीमा बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत संदीप सोनी के साथ। इस समय जब आप अपने घरों में हमें रेडियो, इंटरनेट या फेसबुक के जरिए इत्मीनान से सुन रहे हैं, दुनिया में कुछ एक जगह ऐसी भी हैं जहां लोग दुआ कर रहे हैं कि आसमान से कोई गोला ना गिरे, कोई धमाका ना हो, बस जान बच जाए किसी तरह। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संघर्ष विराम का प्रस्ताव पारित होने के बावजूद सीरिया में विद्रोहियों के ठिकानों पर हवाई हमले लगातार जारी हैं। बीबीसी संवाददाताओं की खबरों का सार नवीन नेगी की जुबानी।
شهرين ما رحنا على المدرسة وشهرين ما شفت رفقاتي قاعدين بالملاجع لأنه في ضرب كتير قوي وهستيري।
सीरिया की राजधानी दमिश्क के नज़दीक पूर्वी गुटा में ये बच्ची कई बच्चों के साथ एक बड़े से बंकर में मौजूद है। बाहर निकलने पर जान जाने का खतरा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संघर्ष विराम का प्रस्ताव पारित होने के बावजूद विद्रोहियों के ठिकानों पर सीरियाई सरकार के हवाई हमले जारी हैं। पूर्वी गुटा में मौजूद डॉक्टर सलीम कह रहे थे कि संघर्ष विराम के बाद ये पहला दिन था, लेकिन आसमान में अभी भी जंगी जहाज मंडरा रहे हैं, बम गिरा रहे हैं।
In almost 7 years of war in Syria, real ceasefires have been rare, ineffective.
बीबीसी के मिडिल ईस्ट एडिटर जेरेमी बॉविन कह रहे थे कि सीरिया में लगभग 7 साल से लड़ाई जारी है और इस दौरान सही मायनों में संघर्ष विराम शायद ही कभी हुआ है। सीरिया के सहयोगी रूस का कहना है कि पूर्वी गुटा में मौजूद जैश अल इस्लाम संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। रूस के दावे पर जैश अल इस्लाम के एक प्रवक्ता कह रहे थे कि जब सीरिया की सरकार ही संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को नहीं मान रही है तो हम भी अपने बच्चों के साथ हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। पूर्वी गुटा में विद्रोहियों के ठिकाने पर सीरियाई बमबारी में पिछले एक हफ्ते के दौरान सैकड़ों लोग मारे गए हैं। सीरिया ने ताज़ा हमला 30 दिन के संघर्ष विराम पर सहमति बनने के कुछ ही घंटों बाद किया, जिसमें हवाई हमलों के साथ जमीनी सैन्य कार्रवाई भी शामिल है। इससे पहले फ्रांस और जर्मनी ने रूस से कहा था कि वो सीरिया की सरकार पर संघर्ष विराम का सम्मान करने के लिए दबाव बनाए। इस इलाके में बैरल बम और अन्य तरीकों से की गई गोलाबारी में बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं और लगभग 4 लाख लोग संघर्ष वाले क्षेत्र में फंसे हुए हैं। कहा जा रहा है कि ताज़ा हमले में सीरिया ने क्लोरीन जैसे रासायनिक हथियारों का भी इस्तेमाल किया है।
सीरिया में संघर्ष विराम के बावजूद विद्रोहियों के ठिकानों पर हवाई हमले।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने कल मेरठ में राष्ट्रोदय नाम से एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों के जुटने का दावा किया गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कार्यक्रम में हिंदुओं की एकता पर जोर दिया। वहीं कई लोग ऐसे भी मिले वहां पर जो इस कार्यक्रम के मकसद पर सवालिया निशान लगा रहे थे। वैसे राजनीतिक विश्लेषक इस पूरे आयोजन में राजनीतिक मतलब देख रहे हैं। सुनिए वात्सल्य राय की रिपोर्ट।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कल मेरठ में एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसे नाम दिया गया था राष्ट्रोदय। इसमें रिकॉर्ड संख्या में स्वयंसेवकों के जुटने का दावा किया गया।
हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं।
सम्मेलन में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने करीब आधे घंटे के अपने भाषण में हिंदुओं के बीच एकता पर जोर दिया और कार्यक्रम में जुटे लोगों को उदाहरण के साथ ये भी बताया कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं।
देव भी दुर्बलों का सम्मान नहीं करते, दुर्बलों का घात करने में आगे पीछे नहीं देखते। ये कार्यक्रम हम करते हैं वो प्रदर्शन के लिए नहीं है। शक्ति का हिसाब लगाते हम कितनी आई, लेकिन शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते।
क्योंकि शक्ति प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं होती, शक्ति होती है तो दिखाई देगी।
सैकड़ों एकड़ में फैले कार्यक्रम स्थल पर मोहन भागवत के पहुंचने के काफी पहले ही कार्यकर्ता जुटने लगे थे। सुरक्षा कड़ी थी और आयोजकों का जोर भी अनुशासन पर था। इससे कुछ पत्रकारों को दिक्कत भी हुई। एक चैनल के प्रतिनिधि अभिषेक शर्मा को सुनिए।
हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, जैसे हमारा नेटवर्क है वो नेटवर्क प्रॉब्लम है, मेल नहीं चल रही है, व्हाट्सएप नहीं चल रहा है। बंधक में एक तरीके से हम पत्रकार मीडिया सेंटर में बंधक है, कोई काम ही नहीं हो पा रहा। बस ये जो अव्यवस्था थी उसमें खबर कर रहे थे तो उन्होंने खबर नहीं करी।
वही कार्यक्रम की जगह से करीब 5 किलोमीटर दूर शहर की मिश्रित आबादी वाले अहमद रोड इलाके में चिंता कुछ अलग थी। यहाँ रहने वाले और खुद को पूर्व कांग्रेस नेता बताने वाले मोहम्मद इशरत ने कहा,
3 दिन से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। इतना बड़ा मंच है, लिफ्ट लगी हुई है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होगा। इधर भी मिलिट्री लगी हुई है, इधर भी फोर्स लगी हुई है, इधर भी पता नहीं क्या। हमारा हिंदुस्तान एक बहुत जिसको सुपर एक ताकत कहने वाली बात है, कहाँ सुपर ताकत देख रहे हैं। हमें तो ऐसा देख रहा है कि सिर्फ एक ही तरफ ताकत देख रही है। जनाब भाई आरएसएस जो है इनकी नहीं मानोगे, इनकी मानोगे कहीं बंदे मातरम जाओगे तो हिंदुस्तान में रहोगे।
हालांकि कार्यक्रम की व्यवस्थाओं में लगा राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए मुस्तैद था। संघ के प्रांत सह संयोजक मौलाना हामिदुल्ला खान राजशाही,
मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को भी इसमें आगे आना चाहिए और आरएसएस का साथ देना चाहिए, क्योंकि आरएसएस जो एक ऐसा संगठन है, हिंदीवादी संगठन नहीं है बल्कि एक राष्ट्रवादी संगठन है।
लेकिन बड़ा सवाल ये भी था कि आखिर आरएसएस के शक्ति प्रदर्शन का मकसद क्या है। वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र शर्मा कहते हैं,
जो मेरी समझ में आता है पटना, बनारस, आगरा और अब मेरठ, वहाँ पर अगर हम भागवत जी के दिए संदेशों को दें तो एक निहितार्थ नजर आता है कि 2019 करीब है, चुनाव करीब है, तो ये सारी एक्सरसाइज, ये सारी कवायद बेमानी नहीं हो सकती। इसके पीछे मंशा एक ही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से कहीं कोई वोटर छिटक रहा है, कोई वर्ग छिटक रहा है, तो वो फिर से जुड़े और उसमें भी फोकस युवा, दलित और देहात पर नजर आता है।
हालांकि कार्यक्रम में आरएसएस की यूनिफॉर्म में मौजूद उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान ने कहा कि संघ का राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, ये संगठन राजनीतिक नहीं है। इस दलील पर पुष्पेंद्र शर्मा का तर्क था कि अगर गैर राजनीतिक संगठन की शक्ति एक राजनीतिक दल के पीछे हो तो उसे क्या कहा जाएगा। जाहिर है इसका जवाब न आरएसएस से मिलेगा और न ही बीजेपी से। वात्सल्य राय, बीबीसी मेरठ।
नमस्कार भारत में, अब बारी है भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की, जहां जल्द ही विधानसभा का चुनाव होने वाला है। मेघालय का समाज यूं तो महिला प्रधान समाज है, लेकिन इस महिला प्रधान समाज की महिलाओं को राजनीति से दूर ही रखा जाता है। शिलोंग से बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने ये रिपोर्ट भेजी है।
पूर्वोत्तर राज्य मेघालय भारत में रॉक संगीत का गढ़ है। कई ऐसे बैंड हैं जिन्हें सिर्फ महिलाएं ही चलाती हैं। मेघालय में महिला प्रधान समाज है, जहां विवाह के बाद पुरुष अपनी पत्नी के घर में रहता है। यहां संपत्ति की वारिस भी बेटियां होती हैं और बेटा भी अपनी माँ के नाम से ही जाना जाता है। मेघालय में विधानसभा के चुनाव की धूम है। कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल इस चुनावी समर में कूद पड़े हैं, मगर महिला प्रधान समाज होने के बावजूद राजनीति में इनकी मौजूदगी नहीं के बराबर ही है। मेघालय भाजपा की नेता बियांका किंडिया कहती हैं कि महिलाओं के लिए राजनीति में जगह बनाना एक मुश्किल काम है।
हाँ, मेघालय एक महिला प्रधान समाज है। हाँ, महिला ही संपत्ति की वारिस भी है। ये बहुत मुश्किल काम है जब आप राजनीति की बात करते हैं। महिलाओं के लिए पुरुषों की राजनीतिक दुनिया में अपनी जगह तलाशना बिल्कुल नामुमकिन सा है। जो इक्का दुक्का महिलाएं राजनीति में हैं, वो भी इसलिए हैं कि उनका परिवार राजनीतिक पृष्ठभूमि वाला है।
It's almost impossible.
सबसे ज्यादा 7 महिलाओं को टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं, जबकि क्षेत्रीय दलों का तो और बुरा हाल है। महिलाओं को प्रत्याशी क्यों नहीं बनाना चाहते हैं ये राजनीतिक संगठन, यही सवाल किया मैंने यूडीपी की नेता प्रीति खार पुंगरो से।
मसला ये नहीं है कि हम महिलाओं को टिकट नहीं देते हैं। हमारे समाज में हमेशा यही मान्यता रही है कि महिला घर की मालिक है, उसके हृदय वहीं तक सीमित हैं। चुनाव लड़ना हो या जंग, इसे सिर्फ पुरुषों का ही काम माना जाता रहा है। महिलाओं को इसमें पीछे ही रखा जाता है।
मेघालय में 60 में से 36 ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जहां महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से ज्यादा है। कुल 307 उम्मीदवारों में सिर्फ 33 ही महिला उम्मीदवार हैं। इन सब के बावजूद मेघालय में पुरुष भी अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। पुरुषों का कहना है कि खास तौर पर जनजातीय खासी और गारो समाज में पुरुषों को न संपत्ति का अधिकार है और न ही उन्हें घर के प्रधान के रूप में ही मान्यता मिलती है। ऐसी लड़ाई लड़ने वाले एक संगठन के माइकल सीएम भी हैं।
People from outside, you know, they see a matrilineal society.
लोगों को बाहर से देखने में लगता है कि मेघालय में महिला प्रधान समाज है, लेकिन जो पुरुष इस समाज में रहते हैं सिर्फ उनको ही पता है वो कैसे रह पाते हैं। लोग समझते हैं कि मर्द बैल है जो सिर्फ बच्चे पैदा करने का काम ही कर सकता है। मेघालय के पुरुषों के बारे में इस तरह की धारणा की वजह से हमने अपने अधिकारों के लिए अभियान चलाया। घर में बाप का कोई महत्व नहीं है क्योंकि बच्चे माँ के वंश का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं और संपत्ति का मालिक सबसे छोटी बेटी या फिर मामा ही होता है। बाप के कोई अधिकार नहीं है।
It wrote, you know, where women rule and men are used as breeding bulls.
मेघालय के समाज ने ऐसी महिलाओं को स्वीकार किया है जिनके बच्चे अलग अलग पिताओं से हैं। मगर अब ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं जब शादी के कुछ ही दिनों के अंदर पति अपनी पत्नी का घर छोड़कर चला जाता है और महिला किसी और से शादी कर लेती है। मेघालय की सरकार ने इन घटनाओं को देखते हुए विवाह के अनिवार्य पंजीकरण का कानून बनाया तो है, मगर चर्च के विरोध की वजह से इसे लागू नहीं किया जा सका। सलमान रावी, BBC मेघालय।
नमस्कार भारत। शॉर्टवेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 7565, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
नमस्कार भारत में आइए एक नज़र दिल्ली से छपने वाले अखबारों की सुर्खियों पर। नवीन नेगी कई अखबार लेकर स्टूडियो में मेरे ठीक सामने बैठे हुए हैं।
आज दिल्ली से प्रकाशित सभी समाचार पत्रों में बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी के निधन की खबरें छाई हुई हैं। तमाम अखबारों ने अपने पहले पेज को श्रीदेवी से जुड़ी यादों से भर दिया है संदीप जी, और समाचार पत्रों ने अपने अपने तरीके से श्रीदेवी को श्रद्धांजलि दी है। कुछ समाचार पत्रों की सुर्खियां हम अपने श्रोताओं को बता दें तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि रूप की रानी का 54 साल की उम्र में निधन, करोड़ों फैंस को लगा सदमा। हिंदुस्तान टाइम्स ने शीर्षक दिया है कि भारत की हीरोइन नहीं रही। वहीं नवभारत टाइम्स ने एक सवालिया शीर्षक बनाते हुए लिखा है कि बिना बीमारी कैसे अचानक चली गई जान। और उसी के साथ नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि लिप सर्जरी का रोल था क्या कोई, और उसके पीछे सवाल या निशान भी उन्होंने लिखा है कि जो सर्जरी श्रीदेवी करवाती थी क्या उसका कोई रोल था उनकी मौत के पीछे।
हालांकि श्रीदेवी इनकार करती रही हैं हमेशा इस बात से।
जी, दैनिक भास्कर ने भी एक आकर्षक शीर्षक दिया है कि चांदनी रात में जुदाई का सदमा दे गई। अन्य खबरों की तरफ नजर दौड़ाएं तो इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि PNB घोटाले में अभियुक्तों को शायद पिछले साल नवंबर में ही बैंक गड़बड़ी की चेतावनी मिल गई थी। अखबार ने लिखा है कि हीरा व्यापारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने पिछले साल नवंबर में ही देश छोड़ने की तैयारी कर दी थी, और उसी वक्त पर मुंबई की जिस PNB ब्रांच में घोटाला हुआ है वहां नया स्टाफ भी भर्ती हुआ था। ये खबर इंडियन एक्सप्रेस ने दी है।
मतलब नवंबर के बाद दिसंबर बीत गया, जनवरी बीत गया, समय
जी
बीत गया, और उससे पहले ही तैयारी हो गई थी।
तैयारी पहले ही हो गई थी। मालदीव में चीन के बढ़ते कदमों को भारत के लिए चिंता का सबब बताया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह खबर प्रकाशित की है और अखबार लिखता है कि चीन मालदीव में एक संयुक्त ओशन ऑब्जर्वेशन स्टेशन बनाने पर विचार कर रहा है। इस स्टेशन के लिए चीन ने माकू नूडू नामक क्षेत्र का चुनाव किया है जो मालदीव के उत्तरी छोर पर पड़ता है। इस स्टेशन के बनने से चीन भारत के समुद्री मार्ग पर आसानी से नजर रख सकेगा।
मालदीव में नवीन कुछ एक महीनों के भीतर ही चुनाव भी होने वाले हैं।
जी बिल्कुल। दक्षिणी राज्य के गवर्नर पर यौन शोषण से जुड़े हुए आरोपों की एक खबर टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रकाशित की है। अखबार लिखता है कि गृह मंत्रालय को एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें दक्षिणी राज्य के एक गवर्नर पर महिला के साथ यौन शोषण यानी यौन दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए गए हैं। शिकायत में लिखा गया है कि राज्यपाल ने राजभवन में काम करने वाली महिला से संबंध बनाने की इच्छा जाहिर की थी। हालांकि मंत्रालय ने अभी तक वो राज्यपाल कौन है उसकी पहचान जाहिर नहीं की
और
है।
राज्य का भी कोई राज्य का भी कोई
अभी कहीं जो है अभी कोई जिक्र नहीं है। एक और खबर की बात कर ले चलते चलते, तो 2019 में होने वाले चुनावों से पहले शायद प्रशांत किशोर टीम मोदी के साथ दोबारा जुड़ सकते हैं। इसमें इस शीर्षक के साथ खबर प्रकाशित की हिंदुस्तान टाइम्स ने। अखबार लिखता है कि साल 2019 में होने वाले आम चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम के साथ प्रशांत किशोर की वापसी हो सकती है।
ये वही प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने में मदद की थी और फिर उसी के खिलाफ बिहार में काफ़ी बड़ा अभियान चलाया था।
प्रशांत किशोर साल 2012 में जो गुजरात विधानसभा चुनाव हुए थे और 2014 के जो आम चुनाव थे, उन दोनों चुनाव में मोदी के साथ उन्होंने काम किया था, लेकिन बाद में दोनों के बीच दूरियां पैदा हो गई थी और फिर भाजपा के विपक्ष में जो पार्टियां थी उनके साथ प्रशांत किशोर थे। इसके अलावा दैनिक जागरण में एक खबर प्रकाशित हुई है कि 48 वर्ष से बेहतर राजग के 48 महीने, ये मोदी जी बोले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है और उन्होंने कहा है कि लोग सोचें कि वंशवादी शासन अच्छा था या हमारी सरकार अच्छी है।
अब इसका फैसला तो जनता तय करेगी। बहुत शुक्रिया नवीन नेगी समाचार पत्रों की सुर्खियां बताने के लिए। श्रोताओं, एक ज़माना था जब पाकिस्तान में जनरल ज़िया की तानाशाही के खिलाफ पाकिस्तान के नौजवान अपने कॉलेज के हॉस्टल में खिड़की दरवाजे खोलकर श्रीदेवी की फिल्में तेज़ आवाज़ में देखा करते थे। फिर क्या होता था, बता रहे हैं पाकिस्तान से वस्तुल्ला खान।
ये तब की बात है जब मैं कराची यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ। एक वर्ष बाद मुझे यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में कमरा मिला। पहला काम ये किया कि अपना सामान सेट किया, दूसरा काम ये किया कि श्रीदेवी के दो पोस्टर सदर जाके खरीदे और उन्हें कमरे की दीवार पे आमने सामने चिपका दिया। ये तब की बात है जब भारतीय फिल्में VCR पे देखना गैर कानूनी था और पकड़े जाने पे 3 से 6 महीने की सज़ा थी। मगर लौंडे कहाँ मानने वाले थे, पैसे जोड़ जाड़ के VCR किराए पे लाते, साथ में 6 फिल्में भी होती। ये मुमकिन ना था कि इनमें से कम अज़ कम 1 या 2 फिल्में श्रीदेवी की ना हों। जस्टिस चौधरी, जानी दोस्त, नया कदम, आग और शोला, बलिदान, सल्तनत, मास्टर जी, जाग उठा इंसान, इनकलाब, अकलमंद, नजराना, आखिरी रास्ता, कर्मा, मकसद, सुहागन, निगाहें, जांबाज, तोहफा, घर संसार, औलाद, सदमा, हिम्मत वाला, नगीना, मिस्टर इंडिया, चांदनी। श्रीदेवी की गैरकानूनी भारतीय फिल्में और वो भी हॉस्टल के हॉल में सब दरवाजे खिड़कियां खोल के फुल वॉल्यूम के साथ देखना ताकि हॉस्टल के बाहर बनी पुलिस चौकी तक भी आवाज़ पहुंच जाए, ये था हमारा प्रतिरोध ज़िया की तानाशाही के खिलाफ। कभी कभी पुलिस वाले दबी दबी जबान में हंसते हुए कहते, हम तुम्हारी भावनाएं समझते हैं पर आवाज़ थोड़ी कम कर लिया करो, कोई टेढ़ा अफसर आ गया तो हमारी पेटियां उतरते देख के तुम्हें अच्छा लगेगा क्या। इन सिपाहियों की जगह हर 3 महीने बाद नए सिपाही आ जाते, पर एक सिपाही मुझे याद है, शायद जमील नाम था, स्पेशल ब्रांच का था इसलिए वर्दी नहीं पहनता था। हॉस्टल की पुलिस चौकी पे 1 वर्ष से जायद नियुक्त रहा। जब उसने अपने ट्रांसफ़र का बताया तो हम 4-6 लड़कों ने कहा, जमील आज तुम्हारी हॉस्टल की कैंटीन में दावत करते हैं। कहने लगा, दावत छोड़ो, श्रीदेवी की कोई फिल्म दिखा दो। उस रात सिपाही जमील को सम्मान देने के लिए जस्टिस चौधरी मंगवाई गई और पूरे सम्मान के साथ देखी गई। आज मैं 30-35 वर्ष बाद सोच रहा हूँ कि अगर श्रीदेवी ना होती तो जनरल ज़िया की 10 वर्ष पे फैली गुप्त तानाशाही हम लड़के बाले कैसे काटते। मैंने श्रीदेवी की आखिरी फिल्म चांदनी देखी, जिंदगी फिर जाने कहाँ से कहाँ ले गई। श्रीदेवी को भी शायद पता चल गया था, इसलिए 90 के दशक में वो भी शाम के सूरज की तरह आहिस्ता आहिस्ता नज़रों से ओझल होती चली गई। मैंने सुना कि इंग्लिश विंग्लिश बहुत अच्छी फिल्म थी, फिर सुना कि मॉम में श्रीदेवी ने कमाल का काम दिखाया और कल तो श्रीदेवी ने कमाल ही कर दिया। मगर मुझे ना कोई दुख है ना हैरत, वॉन गॉफ के बारे में सुना है कि जब उसे अपनी कोई पेंटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगती तो वो उसे फाड़ दिया करता था। कल भी शायद यही हुआ। श्री देवी की पेंटिंग शायद बनाने वाले को ज़्यादा ही भा गई।
और अब खेल खिलाड़ी।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कल भारत के समीर वर्मा ने स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट अपने नाम किया। दूसरी वरीयता हासिल समीर वर्मा ने फाइनल में डेनमार्क के यानो योर्गेंसन को 21-15, 21-13 से हराया। इसके अलावा भारत के ही पारुपल्ली कश्यप भी ऑस्ट्रियन ओपन जीतने में कामयाब रहे। उन्होंने इस्तोनिया के राहुल मस्ट को फाइनल में 21-18, 21-4 से हराया। और अब समीक्षा, भारत को क्या हासिल हुआ दक्षिण अफ्रीका दौरे से?
ये लीजिए, मैच जीत लिया भारत ने यहाँ और ये श्रृंखला भी जीत ली 2-1 से। क्या लाजवाब दौरा रहा है ये भारतीय टीम के लिए।
साल की शुरुआत में ही जब भारतीय क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका पहुंची तो 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-1 से हार गई, लेकिन इसके बाद एक दिवसीय सीरीज 5-1 से और 2020 सीरीज 2-1 से जीतने के बाद भारत की खोई रंगत लौट आई और उस पर ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 स्थान और $10 लाख की इनामी राशि ने जैसे सोने पे सुहागे का काम किया। खुद कप्तान विराट कोहली ने माना कि ये महत्वपूर्ण पल हैं, लेकिन टेस्ट टीम के रूप में बहुत कुछ सीखने को मिला और अब टीम सुधार पर ध्यान देगी क्योंकि अब चुनौती इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के रूप में है।
It's a special feeling, but we take a lot of learnings back home as a test team and something that we are really looking forward to implement on those very important and tough tours to England and Australia.
Test series के बाद एक दिवसीय सीरीज में खुद विराट कोहली, शिखर धवन, युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव जमकर चमके, लेकिन रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे की नाकामी, खासकर एक दिवसीय सीरीज में, भारतीय ड्रेसिंग रूम में चिंता का माहौल बना गई। हार्दिक पांड्या भी कुछ खास नहीं कर सके। रोहित शर्मा ने एक शतक जरूर लगाया लेकिन वो खुद अधिक चिंतित नजर नहीं आते।
मैं मानता हूँ 4 मैच अच्छे नहीं गए, बट सभी प्लेयर से होता है। मुझे पता था कि मैं अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में था, अच्छी बैटिंग हो रही थी नेट में, कोई एक तरीके का डिसमिसल नहीं था, अलग अलग डिसमिसल से, तो वो होता रहता है।
रोहित शर्मा की परीक्षा अब दोहरी है। उन्हें 6 मार्च से श्रीलंका में होने वाली त्रिकोणीय 2020 सीरीज में भारत की कमान सौंपी गई है। विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव को आराम दिया गया है। ऐसे में पहले तो खुद रोहित शर्मा की अपनी फॉर्म ही दांव पर है। इसी बीच अरुणा बुद्धा रेड्डी जिम्नास्टिक विश्व कप में कोई पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। बीते शनिवार को ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं के वोल्ट इवेंट में 13.649 के स्कोर के साथ उन्होंने कांस्य पदक जीता। वहीं दक्षिण कोरिया में कल शीतकालीन ओलंपिक खेलों का समापन हो गया, जहां नॉर्वे 14 स्वर्ण, 14 रजत और 11 कांस्य पदक सहित 39 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा। 31 पदकों के साथ जर्मनी दूसरे और 29 पदकों के साथ कनाडा तीसरे स्थान पर रहा। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
कुछ ही देर में बजने वाले हैं भारत में सुबह के 7, वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। चलते चलते खास खास खबरें एक बार फिर सुनते हैं नवीन नेगी से।
BBC समाचार। बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी का पार्थिव शरीर आज दुबई से भारत लाया जाएगा। श्रीदेवी के पति बोनी कपूर के प्रवक्ता ने मीडिया को यह जानकारी दी। सीरिया की सरकार और रूस पर विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके पूर्वी गुटा में चलाई जा रही कार्रवाई रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा है। पूर्वी गुटा में चल रहे संघर्ष में एक हफ्ते के भीतर सैकड़ों नागरिकों की मौत हो चुकी है। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने घोषणा की है कि अगर सेंटर लेफ्ट सोशल डेमोक्रेट्स के साथ उनकी पार्टी की गठबंधन सरकार बन जाती है तो वह अपनी पार्टी से ही कैबिनेट मंत्रियों का चुनाव करेंगी। अमेरिका ने उत्तर कोरिया के साथ किसी भी तरह की सीधी बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। अमेरिका का कहना है कि उत्तर कोरिया के साथ तभी बातचीत संभव है जब वह अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से बंद कर देगा। BBC समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे शाकिर आलम। फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुंचाया विभुराज ने। अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे कार्यक्रम का नाम दिन भर आप जानते हैं। फिलहाल संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत। bbchindi.com है आपके साथ।